नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। लखीमपुर खीरी कांड के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष के हमले बढ़ भी गए हैं और पैने भी हो गए हैं। कांग्रेस लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मोदी सरकार से बर्खास्त करने की अपनी मांग पर डटी हुई है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला और अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिवारों का मानना है कि जब तक आरोपी के मंत्री पिता अपने पद पर बने रहेंगे तो निष्पक्ष न्याय नहीं होगा। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को लखीमपुर कांड के तथ्यों की जानकारी से जुड़ा मेमोरेंडम भी दे दिया। जवाब में राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इस मसले पर सरकार से, केंद्र सरकार से बात करेंगे। उधर कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी प्रियंका गांधी लगातार इस मामले में सक्रिय हैं। मंगलवार को वो लखीमपुर में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास के कार्यक्रम में गई तो और परिवारों से उनको न्याय दिलाने की भी बात कही। तो प्रियंका गांधी भी आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी। आइए सुनते हैं।
वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। शहीदों के परिवार हैं उनकी ओर से, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते राष्ट्रपति जी के से मिलने के लिए, उनकी ओर से हमने उन्हीं की मांग उठाई है।
जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। ये बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए।
उधर देर शाम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संसद मार्ग पर मशाल जुलूस निकाला है। वैसे इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ मुहिम की कमान प्रियंका गांधी ने ही संभाली हुई है। देखना है कि उनका करिश्मा यूपी विधानसभा चुनावों में क्या करामात दिखा सकता है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर से अपनी विजय रथ यात्रा के साथ 2022 के चुनाव अभियान की उन्होंने शुरुआत कर दी है। अखिलेश यादव ने भी लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी पर हमले किए हैं और उसे किसान विरोधी बताया है। उनकी विजय रथ यात्रा हमीरपुर और कालपी से गुजरी।
बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी ने, आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है, आपके बहुमत को धोखा देने का काम किया है, आपका अपमान करने का काम किया है। आपने सब लोकसभा जिता दी, सब विधायक जीत गए भाजपा के, सब लोकसभा जीत गए। बताओ बुंदेलखंड के हमारे गरीब किसान भाइयों, आपको क्या दिया उन्होंने? ये लगातार जो कानून ला रहे हैं जिसका विरोध हमारे किसान कर रहे हैं, अगर किसानों ने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री बेटे ने उनमें गाड़ी से कुचल दिया। बताओ ये कहां होता है दुनिया में?
उधर बीजेपी भी कमर कस चुकी है। उत्तर प्रदेश समेत पांचों राज्यों की जो चुनाव होने वाले हैं, तैयारी के लिए बीजेपी का वॉर रूम सक्रिय हो चुका है। सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में वरिष्ठ नेताओं के बीच खास चर्चा हुई और लखीमपुर कांड पर भी नए सिरे से रणनीति तैयार करने पर बात हुई। बीजेपी जनता के बीच पहुंचने के लिए अगले 100 दिनों में 100 कार्यक्रम करने जा रही है और इस दौरान युवाओं से चर्चा, विभिन्न जातियों के सम्मेलन और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वालों तक पहुंचने की कोशिश होगी। और आज भी ये वॉर रूम की बैठक हुई है। तो इस बीच लखीमपुर कांड पर बीजेपी का रुख देखते हुए लगता नहीं है कि वो केंद्र मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने के मूड में हैं। तो आपको बता दें, मंगलवार को कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मानवाधिकारों के मसले पर अपनी सहूलियत के हिसाब से सिलेक्टिव मुद्दे उठाना देश के लिए खतरा बन सकता है। उधर अमेरिका के बॉस्टन में हार्वर्ड केनेडी स्कूल में एक कार्यक्रम में जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी ही बात दोहराई। उन्होंने लखीमपुर हिंसा को निंदनीय बताते हुए कहा कि हम इसका बचाव नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना था कि इस तरह की घटनाएं देश के बाकी राज्यों में भी हो रही हैं और उन्हें भी उठाने की जरूरत है, लेकिन लोग ऐसे मामले तभी उठाते हैं जब वो उन्हें अपनी सियासत के हिसाब से उपयुक्त लगे। अपने जवाब में उन्होंने अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को भी नहीं छोड़ा।
It's nice of you to have picked up that one incident, which is absolutely condemnable. Every one of us say that. Equally, there are instances happening elsewhere, is my concern. India has issues of such nature happening in very many different parts of the country. Equally, I would like you and many others, inclusive of Dr. Amartya Sen, who all know India, to raise it at every time when it happens. Not just raise it when it suits us, because it's a state where BJP is in power, one of my cabinet colleagues' son is in probably trouble, and also assume that it's actually them who did it and not anybody else. Due course of justice will also have a complete inquiry process to establish it. And it's not being defensive about my party or my prime minister, it's being defensive about India. I will talk for India. I will talk for justice for the poor. I will not be mocked at. And if it is mocking, I will be defensive to stand up and say, sorry, let's talk on facts. That's my answer for you.
तो लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद विपक्ष के तेवर हमलावर हैं, बीजेपी बैकफुट पर है क्या? तो लखीमपुर कांड और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की इस पृष्ठभूमि में और उत्तर प्रदेश की ओर जो ये बढ़ रहा है, क्या विपक्ष किसानों की नाराजगी को चुनाव में भुना पाएगा? किस पार्टी की क्या होगी रणनीति? बीजेपी की क्या और तमाम पार्टियों की क्या चुनौतियां? हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। कर्नल दयाशंकर जी हैं बीजेपी से, चरणजीत सापरा जी हैं कांग्रेस से, और राजीव राय समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ तीन नेता मौजूद हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कांग्रेस के सापरा जी के पास ही जाऊं और उनसे संभलना चाहूं, सापरा जी, जो ये लखीमपुर का मामला है उसने एक तरह से नई ऊर्जा कांग्रेस को दे दी है, क्या वाकई में कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत अहम हो गए हैं इस समय, क्या वो एक विश्वसनीय विपक्ष की भूमिका अदा कर पाएगा?
देखिए, बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि समय ऐसा आ गया है कि जब एक निरंकुश सरकार और एक जालिम सरकार को सबक सिखाना जरूरी है और कांग्रेस पार्टी के लिए विपक्ष की भूमिका को निभाना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमने देखा कि 3 अक्टूबर से लेकर के आज तक जब किसानों की निर्मम हत्या हुई है, किस तरह से उनको गाड़ी के टायरों तले कुचल दिया गया, और पहले दिन से अजय कुमार मिश्रा टेनी जो देश के गृह राज्य मंत्री है वो अपने पुत्र को बचाने के उसमें लगे हुए हैं, यानी FIR में 302 के तहत मामला दर्ज होने के बाद भी 6 दिन तक पुलिस मोनू मिश्रा को न्योता दे रही थी, यानी रेड कार्पेट वेलकम उनको मिल रहा था। और उसके बाद भी जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो आपने देखा होगा कि चाय और स्नैक्स बटलर लेकर के उनके कमरे में जा रहा है। क्या इस तरह का स्वभाव जो है वो हर एक जो आरोपी है, 302 का मर्डर केस का आरोपी है, क्या देश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस दूसरे लोगों के साथ भी इसी तरह से VIP बर्ताव करेगी? तो ये तमाम सारे सीन जो हम देख रहे हैं ना, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से अजय कुमार टेनी अपने पुत्र को बचाने जा रहे हैं, और देश इनका इतिहास भी जानता है, यानी किस तरह की गुंडाई उन्होंने पहले भी की है, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा।
जी जी, मैं तो आपसे बिल्कुल, ये कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ये तमाम मुद्दे सामने रखना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता क्या विश्वास कर सकती है कांग्रेस पर कि वो उस पर भरोसा करे कि वो उसके और मुद्दे उठाए? क्योंकि ऐसा नहीं कि यही एक लखीमपुर का ये इतना भयावह मसला सामने आ गया और कांग्रेस ने उसे उठाया, इसको उठा रही है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था कोविड का मिसमैनेजमेंट हो या जीएसटी को जिस तरह से लागू करने में तमाम जानकारियां सामने आ रही थी, या हम कहें कि महंगाई, तेल के दाम है, पेट्रोल के दाम है, या तमाम चीजें मसले हैं, बेरोजगारी है वो इतनी बड़ी हुई है, उन सब मसलों पर कांग्रेस सक्रिय नहीं हुई। ठीक चुनाव से एक कुछ महीनों पहले इस मामले को लेकर कांग्रेस सक्रिय हुई है, क्या देरी से सक्रिय हुई है कांग्रेस?
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि देरी से सक्रिय हुई है कांग्रेस। आपने देखा होगा और आपके टीवी चैनल ने भी दिखाया होगा कि चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अगर ब्राह्मण वहां के जो पंडित है उनकी हत्या का मुद्दा हो, इस तरह से तमाम जो मुद्दे हैं, फिर वो चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, हाथरस का मुद्दा हो, सोनभद्र का मुद्दा हो, या फिर ये लखीमपुर खेरी का मुद्दा, इस तरह से हर मुद्दे के अंदर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता और आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी पुरजोर तरीके से सामने आए हैं। और चाहे कोई फेस्टिवल की भी बात हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों से आप देख रहे हैं कि सक्रियता से लोगों के बीच में है, लोगों के मुद्दे उठा रही है, और लोगों के मुद्दे लेकर के हम ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की सरकार का पूरा पर्दाफाश कर रहे हैं। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी की
कोशिश है, बिल्कुल आपकी पूरी पुरजोर कोशिश है। अब मैं राजीव राय को लेती हूँ। राजीव जी, अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा चला रहे हैं और हम लगातार आज दूसरा दिन है देख रहे थे कि बहुत भीड़ आ रही है उनकी यात्रा में, बहुत लोग जुड़ रहे हैं उनकी यात्रा से, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर भी यही सवाल उठ रहा है कि विपक्ष वो उतरे तो, लेकिन बहुत देर से उतरे हैं बीजेपी को खिलाफ सवाल उठाते हुए।
निधि जी, कम से कम आपके चैनल पे ये बातें ना हो तो अच्छा है, क्योंकि आपने लगातार दिखाया है, आपने देखा है, और आपके साथ तो मैं लगभग एक दशक से ज्यादा समय से डिबेट कर रहा हूँ। कहीं इतिहास में या हिंदुस्तान के इतिहास में आप नहीं देखा होगा कि जब कोरोना के पहले अटैक में लोग मर रहे थे सड़कों पर, तो जो भी उत्तर प्रदेश से गुजरे, चाहे बिहार के हो पीड़ित, चाहे उत्तर प्रदेश को हो, कोई विपक्ष की पार्टी अपने अकाउंट से न सिर्फ सहायता कर रही है, चेक तक काट कर दे रही है। हम सारे लोग सड़कों पर थे, और आपके बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार जानते हैं, जैसे मैंने अपने बलिया मऊ में सारी दवाओं की दुकानों को फ्री कर दिया था, पुलिस के साथ मिलकर घर घर खाना पहुंचवाया था, तो हर जगह रहे। मैं स्वयं जिंदगी में पहली बार जेल में गया, और जो पहली बार मेरे ऊपर FIR हुआ कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आपराधिक धाराओं को याद दिलवा दिया था। मैं वर्तमान परिस्थितियों में आंदोलन, जो भीड़ आप देख रही हैं विजय यात्रा के समय में, 2012 के चुनाव के रथ यात्रा में, 11 की यात्रा में मैं तो रथ में ही रहा करता था, लेकिन मैं ईमानदारी से बता दूं कि इतनी भीड़ तब भी मैंने नहीं देखा था। लोगों के मन में जो उबाल है, आक्रोश है, फ्रस्ट्रेशन है, उनको एक उम्मीद के रूप में अखिलेश यादव जी दिख रहे हैं। मैं 2-3 उदाहरण दे दूं, आज का दे दूं, पीलीभीत पुलिस का एक ट्वीट आपने देखा होगा, अभी मैं चेक कर रहा था आपके चैनल पर आया तो डिलीट कर दिया। उन्होंने एक बहुत बहादुरी वाला ट्वीट की फोटो के साथ किया है कि एक अमुक व्यक्ति को 342 रुपया और एक डार्ट पेन के साथ गिरफ्तार किया गया, एक डायरी के साथ, लॉटरी के धंधे में या जो भी धंधे में। एक नोएडा पुलिस का ट्वीट था, एक लड़का ठेला लगा रहा था, उसको थप्पड़ मारकर जेल में बंद कर दिया, उसका विकलांग बाप रो रहा था। आजमगढ़ में एक 8 वर्ष की महिला बच्ची का बलात्कार करके हत्या कर दिया, विरोध करने पर SP खुद ही जाकर सड़क पर थप्पड़ लगा रहे हैं। तो जब इस तरह का शासन, इस तरह का जंगल राज उत्तर प्रदेश में हो, लोगों को कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही हो। किसान आंदोलन में मैं था, कोरोना में मैं था, मैं का मतलब हमारी पार्टी
जी, उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से ये है कि जो विपक्ष यूपी की जनता के सामने है, क्या वो उनपे भरोसा करे? अब हमारे साथ कर्नल दयाशंकर जी मौजूद है। दयाशंकर जी, जो ये आपने समाजवादी पार्टी की रैली में जिस तरह की भीड़ देखी, या जिस तरह से आप कांग्रेस की अब सक्रियता देख रहे हैं, क्या बीजेपी चिंतित है यूपी में?
निधि जी, ये पूरा का पूरा प्रकरण भाजपा के ऊपर आरोप के साथ शुरू हुआ था। मेरा आग्रह होगा, बल्कि बेहतर तो ये होता कि शायद हम पहले ही अपनी बात रख लिए होते और सफाई भी दे लिए होते, लेकिन अब चूंकि मौका बाद में मिला है, चलिए आप सबको आभार, और मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से मैं सुन रहा था, एक बार कोशिश करें सुनने की। और मुझे पूरा भरोसा है कि सपा प्रवक्ता तो मेरे भाई ही हैं, और सापरा जी से एक आध बार मेरी जानकारी है, चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करें। सापरा जी, आप कह रहे थे कि सबक सिखाना है। आपको पता होगा आपकी पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत 410 सीटों के ऊपर जब पाई थी, उस समय आपने स्थिति ऐसी कर दी थी पार्लियामेंट के अंदर कि सबको एक साथ, विपक्ष को एक साथ, सबके सब लोग वहां से त्यागपत्र देके बाहर निकल गए। सबक सिखाना उसको बोलते हैं जब 84 में महाकांड होता है, उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, उसके लिए टाइटलर जी क्या किए थे और सज्जन कुमार, वो आप समझते हैं। अब दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि जब इस आपका डेलीगेशन राष्ट्रपति जी के यहां चला गया, राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं सरकार से भी बात करूंगा। आप विदेशी फोरम पर भी गए, अमृत सेन जी ने बोला है, अमर सेन जी ने, और वहां पर भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पष्ट कर दिया कि अपराध अपराध होता है, वी आर नॉट गोइंग टू डिफेंड। अब एक बात जरूर उठ रही है, ये मैं राजीव भैया के लिए कहूंगा कि राजीव भैया, पड़ोसी जब दुश्मन हो जाता है तो उसकी बिलार नहीं मारी जाती, आप हमारे दोस्त भी हैं, दुश्मन की बिलार मारने से कोई फायदा नहीं है। यहां तो कांग्रेस की हालत तो यह है कि वो डार्विन थ्योरी में बिलीव करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो किस चीज का काम तो कर नहीं सकते, क्योंकि कहीं है नहीं, केवल झगड़ा बवाल यही सब करेंगे, एक बार नहीं दो बार जाएंगे, तीन बार जाएंगे और बवाल मचाएंगे। अब मैं निधि जी को एड्रेस करता हूं छोटे शब्दों में। आदरणीय निधि जी, आप एक बात स्पष्ट समझ ले कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी ये बात कही है, एक इनफॉर्मल मीटिंग में ही कार्यकर्ताओं से वो कह रहे थे कि जो आरोप लग रहा है सही है गलत है ये तो जांच के बाद निकल के आएगा, लेकिन मैं सबको आगाह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता में भी विश्वास करती है, इसलिए हम सबको शुचिता के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ रहना है, अपने लोगों के साथ रहना है, और घूम घूम करके जाकर के जो हमने संकल्प लिया था सबका साथ सबका विकास, उसको हमने सोच ईमानदार बनाई और काम दामदार रखा, और हमारी कोशिश पूरी ये रही है कि हम जनता की सेवा करते रहे।
दयाशंकर जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से, सुनिए सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आपने पश्चिम बंगाल में देखा एक मजबूत नेत्री से आपको मुकाबला करना पड़ा ममता बनर्जी, दिल्ली में भी आपने देखा एक अलग सरकार है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष भले ही है अभी सक्रिय हो रहा है लेकिन वो बिखरा हुआ है, इसलिए आप लोग निश्चिंत हैं क्योंकि वहां पे तो विपक्ष एकजुट नहीं है।
निधि जी, यू आर ए लर्नेड पर्सन, कई बार मैं इंगित कर चुका हूं इस चीजों को, आप बताइए राजनीति में एक दूसरे का विरोध नहीं तो करेंगे तो क्या करेंगे? हम और राजीव भाई इस प्लेटफॉर्म पर बैठ करके यदि हम अपने अपने विचारों के साथ एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वही प्रियंका गांधी करने आई है, जो उनका विचार है वो कर रही है, उनको अरेस्ट किया गया वहां जाते समय कि कोई और बवाल न मचा दे तो वो झाड़ू मारने लगी, बताइए वहां झाड़ू मारने का स्वच्छता अभियान का क्या आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने किया, गए थे, अखिलेश जी भी गए थे,
अखिलेश जी गए थे, दबाव में भी तो आया,
और भी जगह जा रहे हैं। सुनिए निधि जी, क्या है मैं कहना चाहता हूं कि आप राजनीति करिए, छद्म राजनीति न करें। जिसके साथ एक बात मैं बड़ा पीड़ा के साथ कहता हूं, आपने भी एड्रेस किया था, जिन लोगों ने मार दिया उनको भी, और जो उसके प्रति उत्तर में कुचल के मार दिए उनको शहीद हम एड्रेस कर रहे हैं। आपको पता है ना, इस देश में भी कुछ लोग शहीद हो रहे हैं, क्या चन्नी जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां जाएंगे और जाकर के उनको भी 50-50 लाख देंगे? नहीं करेंगे। हनुमानगढ़ राजस्थान में सापरा साहब जाएंगे या अभी तक नहीं गए? राष्ट्रपति जी के यहां गए तो कम से कम सापरा साहब हनुमानगढ़ राजस्थान की बात को भी आप रख लिए होते तो मैं कहता कि आप समान।
ठीक है दयाशंकर जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, सापरा जी, क्या विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में अगर वाकई में बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अपना लक्ष्य साधने में लगी है, उनका जो लक्ष्य है चुनावी लक्ष्य है वो उसको साधने में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष अपनी तरफ से अलग अलग पॉकेट्स में कोशिश कर रहा है, क्या अगर विपक्ष को अपना लक्ष्य साधना है तो क्या एकजुट होना पड़ेगा? सापरा जी संक्षेप में।
देखिए नहीं निधि जी, मैं आपके आपके सवाल का उत्तर जरूर दूंगा, पहले मैं दयाशंकर जी का भी उत्तर दे दूं, मैं भूतकाल के उदाहरण में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं जरूर इनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली क्या होती है। आपने हाथरस देखा, आपने कुलदीप सेंगर का मामला देखा, यानी बलात्कारियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, वहां जम्मू कश्मीर के अंदर सारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बलात्कारियों के साथ में जाकर खड़ी हो गई है, तो जिस तरह से सारा देश देखता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर के गली तक के नेता जाकर के अपराधियों के साथ में खड़े होते हैं, ये देखते हुए हमें
आपका समय चला गया। राजीव राय, विपक्ष को क्या एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि हम साथ नहीं आएंगे अब कांग्रेस के, जैसे पहले गलती करी थी, तो क्या कांग्रेस को साथ लेंगे कि इस बार अकेले अकेले ही रहेंगे?
नीति जी, उस समय उत्तर प्रदेश की जनता एकजुट है ऐसी सरकार को बाहर करने के लिए, जो सरकार हाथरस से लेके उन्नाव से लेके लखीमपुर तक जब तक कोर्ट इनको लताड़ता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, इनको समझ में नहीं आता है, ऐसी सरकार को बाहर करने के लिए पूरी जनता एकजुट है, और विकल्प समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। मुझे तो आश्चर्य कि आदरणीय कर्नल साहब आर्मी के बैकग्राउंड से है, माफी ब्यूरो के बैकग्राउंड से नहीं है, इनका खून क्यों नहीं खौलता है? कह रहे पुलिस वालों, जब तुम एक ठेले वाले को गिरफ्तार कर सकते हो, एक डाट पेन 356 रुपए वाले को गिरफ्तार कर सकते हो, एक बलात्कार से बलात्कार करके मार दी गई 8 वर्षीय बच्ची की माँ बाप को थप्पड़ मार सकते हो, तो टेनी बाबा के सुपुत्र जो 302 के आरोपी पहले से भी रहे हैं, उनकी इतनी खत्म खातिरदारी क्यों? और जानते हैं क्यों निधि जी? कर्नल भाई साहब, सोच लीजिएगा, अपने आत्म चिंतन करिएगा, इस रात को दिल पे हाथ रखकर सोचिएगा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ताड़ीपार व्यक्ति मुख्य जो ताड़ीपार रहा गृह मंत्री है, अपराधों से लैस मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, और 302 का जिसकी अभी फैसला नहीं आ रहा
है, जवाब देंगे
आरोपी देश का गृह राज्य मंत्री है।
आप एक मिनट, हमें कुछ कहना है।
ठीक है राजीव जी, अपने बात कह दी, जो मैंने पूछा था ना आपने जवाब दिया, ना सापरा जी ने जवाब दिया। दयाशंकर जी, मेरे पास समय जितना ही है, मैं वैसे ही ओवर हो गई, लेकिन वाकई में जो उत्तर प्रदेश की चुनौती है बहुत अहम है। सत्ता पक्ष अपना लक्ष्य साधने में लगा हुआ है, लेकिन क्या जो रूरल डिस्ट्रेस है वो उस पर बैकफुट पर आएगा? लेकिन विपक्ष जो अपनी तरह से कोशिश कर रहा है, क्या वो बहुत देर से जागा है और क्या वो एकजुट हो पाएगा? बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। आज नवरात्र में अष्टमी पूजन की रौनक रही। कोलकाता में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल पहुंचे, लेकिन दिल्ली में कोविड प्रोटोकॉल का पालन देखने को मिला। जाते जाते इन्हीं दृश्यों के साथ छोड़ दिए जाते हैं।